एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है, ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम एक ऐसी किताब और उसके लेखक पर बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया को सच में हिला कर रख दिया था, प्रीमो लेवी की सर्वाइवल इन ऑशविट्स।
जी, वैसे इसका असली इतालवी नाम से क्वेस्टो एउन वोमो है।
हाँ, जिसका मतलब हुआ अगर ये एक इंसान है। ये किताब 1947 में छपी थी
और इसमें लेवी ने अपने जो अनुभव थे नाजी यातना शिविर ऑशविट्स में उनको बयान किया बहुत ही मार्मिक तरीके से।
और प्रीमो लेवी मतलब सिर्फ लेखक नहीं थे, वो और भी कुछ थे, है ना?
बिल्कुल, प्रीमो लेवी 1919-1987 इटली के यहूदी थे, एक केमिस्ट थे बाकायदा और होलोकॉस्ट से जिंदा बच निकलने वालों में से एक।
हाँ, और ये बात दिलचस्प है कि वो एक वैज्ञानिक भी थे।
जी हाँ, उनका वो वैज्ञानिक दिमाग और साथ में उनका इटालियन यहूदी होना, इन दोनों चीजों ने मिलकर उन्हें इतिहास के इस भयानक त्रासदी को देखने का एक बिल्कुल कह सकते हैं अनोखा नजरिया दिया।
तो क्या ये किताब सिर्फ दर्द और तकलीफ की कहानी है या उससे कुछ ज्यादा है?
नहीं नहीं ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये इस बारे में है कि जब हालात इतने खराब हो जाएं, मतलब बद से बदतर, जब इंसानियत को पूरी तरह से कुचलने की कोशिश हो रही हो,
तब भी इंसान होने का क्या मतलब बचता है?
हाँ बिल्कुल यही। और लेवी की खासियत यही थी कि वो एक वैज्ञानिक की तरह चीजों को बहुत बारीकी से देख सकते थे, विश्लेषण कर सकते थे
और साथ ही एक लेखक की तरह उन भावनाओं को महसूस भी कर सकते थे और करवा भी सकते थे।
सही कहा। तो ये किताब सिर्फ एक दर्दनाक याद नहीं है, बल्कि ये इस बात पर एक गहरा चिंतन है कि कैसे चरम दबाव में मानवता को बनाए रखा जाए।
मानवीय गरिमा, याददाश्त और जो बुराई उन्होंने देखी उसे दुनिया को बताने की एक नैतिक जिम्मेदारी भी।
बिल्कुल, उनकी वैज्ञानिक सोच और साहित्यिक संवेदनशीलता, ये दोनों मिलकर इसे एक ठंडा विश्लेषणात्मक नजरिया भी देते हैं और साथ ही गहरा भावनात्मक जुड़ाव भी पैदा करते हैं।
तो ये एक तरह से मानवीय गरिमा, स्मृति और बुराई का साक्षी बनने की नैतिक अनिवार्यता पर एक कालातीत दार्शनिक खोज बन जाती है।
सही। चलिए लेवी के सफर को थोड़ा और समझते हैं जिसने इस असाधारण किताब को जन्म दिया।
हाँ, शुरू से शुरू करते हैं। उनका जन्म 1919 में ट्यूरिन, इटली में हुआ था।
जी, एक उदार मध्यम वर्गीय और काफी हद तक इटालियन समाज में आत्मसात हो चुके यहूदी परिवार में।
माहौल कैसा था घर का?
माहौल काफी धर्मनिरपेक्ष और बौद्धिक था, मतलब तर्क, वैज्ञानिक सोच और संस्कृति को महत्व दिया जाता था। प्रबुद्धता की जो तर्कवादी परंपराएं हैं उनका असर था।
और बचपन से ही लेवी की दिलचस्पी किन चीजों में थी?
दो चीजें खास थीं, एक तो साहित्य, खासकर दांते की कविताएं, और दूसरा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री।
अच्छा, तो ये दोनों ही चीजें आगे उनके काम आने वाली थी।
बिल्कुल, वैज्ञानिक सोच की वो सटीकता और तर्क उनके विश्व दृष्टिकोण का एक अहम हिस्सा बन गए।
उस वक्त इटली में मुसोलिनी का राज था, फासीवाद। यहूदियों के लिए माहौल कैसा था?
शुरुआत में यहूदी विरोध उतना तीव्र नहीं था, मतलब इटली में जर्मनी जैसा हाल नहीं था, लेकिन 1938 में जो नस्लीय कानून आए,
हाँ, उसके बाद सब बदल गया होगा।
हाँ, चीजें काफी बिगड़ गईं। अचानक से उन पर यहूदी होने का एक बाहरी ठप्पा लगा दिया गया, उन्हें समाज से अलग थलग महसूस होने लगा।
लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी।
जी हाँ, ये कमाल की बात है। उन्हीं नस्लीय कानूनों के बावजूद उन्होंने 1941 में ट्यूरिन विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री में डॉक्टरेट पूरी की।
लेकिन शायद डिग्री पर कुछ लिखा था।
हाँ, उनकी डिग्री पर ये लिखा गया था यहूदी जाति का। ये अपने आप में एक अजीब और दुखद विडंबना थी और आने वाले खतरों का एक तरह से संकेत भी।
और फिर खतरे बढ़ती गए।
हाँ, 1943 में वो जवानी के जोश में थे, एक अनुभवहीन फासीवाद विरोधी प्रतिरोध समूह में शामिल हो गए।
लेकिन शायद ये ज्यादा चला नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं चला। दिसंबर 1943 में फासीवादी मिलिशिया ने उन्हें पकड़ लिया
और यहीं पर उन्होंने वो फैसला लिया।
हाँ, जब उनसे पूछा गया कि वो कौन है तो उन्होंने सच बता दिया कि वो यहूदी है। उन्हें लगा कि एक यहूदी होना कबूल करना फासीवाद विरोधी पक्षपाती होने से शायद कम खतरनाक हो।
और शायद ये सच भी था उस वक्त।
शायद हाँ, लेकिन इस एक कबूलनामे ने उनकी जिंदगी का रास्ता पूरी तरह बदल दिया। उन्हें पहले इटली के फोसोली ट्रांजिट कैंप भेजा गया
और फिर
फरवरी 1944 में उन्हें और सैकड़ों दूसरे लोगों को मवेशियों की तरह एक ट्रेन में ठूंसकर ऑशविट्स भेज दिया गया।
निर्वासन।
ऑशविट्स पहुंचना उसकी कल्पना करना भी आज हमारे लिए कितना मुश्किल है।
हाँ, वो ट्रेन की दमघोटू यात्रा और फिर वहां पहुंचते ही सब कुछ छीन लिया गया। नाम, बाल, कपड़े, सामान, गरिमा का हर निशान।
वो अब प्रीमो लेवी नहीं रहे।
नहीं, वो बन गए नंबर 174517। उनके हाथ पर ये नंबर गोद दिया गया
और फिर शुरू हुआ कैंप के नियमों को सीखना। हाँ, वो बेरहम नियम, लगातार भूख, कंपाने वाली ठंड, हर वक्त का डर, किसी पर भरोसा ना कर पाना और ये भयानक एहसास कि जिंदगी और मौत बस एक संयोग है, किसी तर्क पर आधारित नहीं।
लेकिन फिर भी उस अंधेरे में भी कोई उम्मीद की किरण, कुछ ऐसा जिसने उन्हें टिके रहने में मदद की।
हाँ, एक अनपेक्षित मोड़ आया। 1944 के पतझड़ में उनकी केमिस्ट्री की जो पृष्ठभूमि थी वो काम आ गई।
अच्छा, कैसे?
उन्हें बुना मोनोविच सिंथेटिक रबर फैक्ट्री की एक प्रयोगशाला, जिसे कमांडो 98 कहते थे, वहां काम करने के लिए चुन लिया गया।
लेकिन ये हुआ कैसे?
उन्हें एक बहुत ही भयानक, डरावना रासायनिक परीक्षण पास करना पड़ा था, उसके बाद ही ये संभव हुआ।
वो मजाक में इसे अपना करियर ब्रेक थ्रू कहते थे, है ना?
हाँ बिल्कुल, कहने को ये एक मामूली बदलाव लगता है, पर असल में ये जीवन रक्षक साबित हुआ।
क्यों, क्या फायदे थे इस काम के?
कई फायदे थे। एक तो घर के अंदर, मतलब लैब में काम करना पड़ता था, तो कड़ाके की ठंड से बचाव था, शारीरिक मेहनत भी कम थी।
और शायद कुछ और भी।
हाँ, सबसे अहम बात, वहां चोरी के अवसर थे, जैसे ग्रीस, साबुन, अल्कोहल जैसी छोटी मोटी चीजें चुराकर वो बाहर रोटी के लिए बदल सकते थे।
तो इससे उनके जिंदा रहने की संभावना काफी बढ़ गई।
निश्चित रूप से, और सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, इसने उन्हें निरीक्षण करने, आसपास क्या हो रहा है ये समझने के लिए थोड़ा मानसिक स्थान भी दिया।
तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि अगर हम कहें तो क्या थी?
देखिए, उनकी मुख्य उपलब्धि तो यही थी कि वो जिंदा रहे और जो उन्होंने देखा उसका साक्षी बनने के लिए बचे रहे।
और आजादी कब मिली?
जनवरी 1945 में, जब सोवियत रेड आर्मी ने आश्विट्स को आजाद कराया।
लेकिन उस वक्त लेवी कहाँ थे? क्या वो ठीक थे?
किस्मत की बात है, जब जर्मन भाग रहे थे और उन्होंने बहुत से कैदियों को मौत के मार्च पर हांक दिया था, उस वक्त लेवी कैंप के बीमार खाने, जिसे काबे कहते थे, उसमें स्कारलेट फीवर से बीमार पड़े थे।
तो इस वजह से वो उस डेथ मार्च से बच गए।
हाँ, इसी बीमारी ने एक तरह से उनकी जान बचा ली।
उन्होंने उन 10 दिनों के बारे में भी लिखा है, जर्मनों के जाने और सोवियत के आने के बीच का समय।
जी हाँ, वो एक अजीब सा खालीपन का, अनिश्चितता का समय था। उस वीरान पड़े कैंप में जो थोड़े बहुत बीमार कैदी बच गए थे, उन्होंने मिलकर एक छोटा सा, बहुत नाजुक सा समुदाय फिर से बनाने की कोशिश की।
मतलब उस तबाही के बीच भी।
हाँ, सहयोग और देखभाल की जो मानवीय प्रवृत्ति है वो फिर से उभर आई। ये देखना वाकई अद्भुत है।
युद्ध के बाद वो वापस ट्यूरिन लौटे।
हाँ, वो ट्यूरिन वापस आए और फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने की कोशिश की। उन्होंने एक पेंट कंपनी सिवा में 30 से ज्यादा साल तक केमिस्ट के तौर पर काम किया।
और लिखना कब शुरू किया?
लिखना भी साथ साथ शुरू कर दिया था। बताने की इतनी तीव्र इच्छा थी उनके अंदर। लेकिन उनकी पहली किताब सर्वाइवल इन ऑशविट्स, उसे शुरुआत में प्रकाशकों ने अस्वीकार कर दिया था।
क्या, इतनी महत्वपूर्ण किताब को?
हाँ, यकीन करना मुश्किल है, पर सच है। ये तो 1960 के दशक में जाकर इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और फिर धीरे धीरे प्रीमो लेवी एक प्रमुख साहित्यिक हस्ती और एक नैतिक आवाज के रूप में पहचाने जाने लगे।
लेकिन क्या वो ऑशविट्ज़ के अनुभवों से कभी पूरी तरह उभर पाए?
नहीं, शायद नहीं। वो बाद के सालों में अवसाद और सर्वाइवर गिल्ट, मतलब जिंदा बच जाने के अपराध बोध से काफी संघर्ष करते रहे।
और 1987 में उनकी मृत्यु हो गई।
हाँ, उनकी मौत अपार्टमेंट की सीढ़ियों से गिरने से हुई, जिसे ज्यादातर लोग आत्महत्या मानते हैं, हालांकि इस पर कुछ विवाद भी है। पर उनकी विरासत बहुत बड़ी है। वो होलोकॉस्ट की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ईमानदार आवाजों में से एक माने जाते हैं।
अब जरा उनकी सोच, उनके दर्शन पर बात करते हैं।
हाँ,
उनकी पृष्ठभूमि एक वैज्ञानिक की थी।
हाँ, वो एक वैज्ञानिक मानवतावादी थे। तर्क अनुभवजन्य साक्ष्य, मतलब जो देखा और महसूस किया, और व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास था।
तो उन्होंने ऑशविट्स को कैसे देखा? किसी शैतानी जगह की तरह?
नहीं, उन्होंने ऑशविट्स को एक राक्षसी सामाजिक प्रयोग के रूप में देखा। एक ऐसा प्रयोग जिसके वो अनिच्छुक पर्यवेक्षक बन गए थे। उनके लिए हॉलोकॉस्ट कोई रहस्यमयी बुराई नहीं थी, बल्कि
क्या?
बल्कि कट्टरता, नौकरशाही की बेरहमी और आम लोगों की उदासीनता का एक तार्किक, भयानक नतीजा था।
उन्होंने इंसानियत की नाजुकता पर भी जोर दिया।
हाँ, वो मानते थे कि हमारी मानवता, हमारी सभ्यता, ये सब बहुत नाजुक चीजें हैं। ये हमारी स्मृति, संस्कृति, संचार और नैतिक चुनाव करने की हमारी क्षमता पर टिकी हुई हैं। और कैम का उद्देश्य ही इस पूरे ढांचे को नष्ट करना था।
यहीं पर वो ग्रे जोन की बात करते हैं ना, ये क्या है?
हाँ, ये उनकी सोच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मुश्किल हिस्सा है। ग्रे जोन या धूसर क्षेत्र, वो पीड़ित और अपराधी के बीच के सरल बंटवारे को नकारते थे।
मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ दो ही तरह के लोग थे, या तो पूरी तरह बुरे नाजी या पूरी तरह बेगुनाह कैदी।
बिल्कुल, लेवी ने उन कैदियों का विश्लेषण किया, जैसे कापो, वो कैदी जिन्हें दूसरे कैदियों पर अधिकार मिल जाते थे, या बैरक प्रमुख जो जिंदा रहने के लिए किसी न किसी तरह उस व्यवस्था में सहभागी बन गए थे।
ये तो बहुत ही असहज करने वाली बात है।
है, क्योंकि यह हमें आरामदेह नैतिक निश्चितताओं से बाहर निकालती है। लेवी ने इन लोगों की जांच किसी नैतिक श्रेष्ठता के भाव से नहीं की, बल्कि दया और समझने की बौद्धिक ईमानदारी के साथ की। वो ये सवाल उठाते हैं कि हम खुद ऐसी परिस्थितियों में क्या करते।
उन्हें लिखने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया?
दो मुख्य प्रेरणाएं थी। पहली और सबसे जरूरी, बताने की एक तत्काल नैतिक अनिवार्यता, गवाही देना, उन लोगों के लिए बोलना जो वापस नहीं आ सके, जिन्हें वो डूबे हुए कहते थे।
और दूसरी?
दूसरी थी समझने की इच्छा। लिखने के जरिए वो उस भयानक अराजकता को एक व्यवस्था देना चाहते थे, उसे समझना चाहते थे। वो कैंप के तंत्र का, उसके मनोविज्ञान का विश्लेषण करना चाहते थे। वो समझना चाहते थे कि अमानवीयकरण की ये प्रक्रिया कैसे काम करती है।
उनका मानना था कि अगर हम समझेंगे तभी रोक पाएंगे।
हाँ, रोकथाम के लिए समझ को वो बेहद जरूरी मानते थे।
और उस नर्क जैसे माहौल में उन्होंने खुद को कैसे संभाला, क्या तरीके अपनाए?
एक तो, जैसा हमने कहा, उनका अवलोकन और संयम। वो सिर्फ भुगत नहीं रहे थे, वो एक विश्लेषक भी थे। वो लगातार कैम की गतिशीलता, वहां जिंदा रहने की अर्थव्यवस्था, लोगों के मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे थे।
और उनकी लिखने की शैली भी इसमें मददगार रही होगी।
हाँ, उनका वो शांत स्पष्ट गद्य, कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई मेलोड्रामा नहीं, वो तथ्यों को खुद बोलने देते थे। ये संयम ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।
इसके अलावा मानसिक रूप से सक्रिय रहना भी जरूरी था उनके लिए।
बहुत जरूरी। जैसे अपने एक साथी अल्बर्टो के साथ दांते की डिवाइन कॉमेडी के अंश याद करना और सुनाना, ये छोटी छोटी बौद्धिक गतिविधियां उनके मनोवैज्ञानिक अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण थी।
और उन्होंने ये भी माना कि जिंदा रहने के लिए कभी कभी नैतिक रूप से समझौता करना पड़ता था।
हाँ, उन्होंने इस मुश्किल सच्चाई को भी स्वीकार किया, एक तरह का नैतिक लचीलापन, लेकिन अपनी नैतिक सीमाओं के भीतर। उन्होंने माना कि जीवित रहने के लिए कभी कभी ऐसे विकल्प चुनने पड़ते थे जो नैतिक रूप से शायद पूरी तरह सही नहीं थे, जैसे खाने के लिए कुछ चुराना।
चलिए अब उन तीन खास घटनाओं या मोड़ों पर आते हैं जिन्होंने लेवी की जिंदगी और उनके ऑशविट्ज़ के अनुभव को गहराई से शक्ल दी। पहला तो शायद उनका वहां पहुंचना और सिलेक्शन ही था।
हाँ, फरवरी 1944, वो ट्रेन से उतरना, मर्दों और औरतों का तुरंत बिना किसी संवेदनशीलता के अलग किया जाना, एसएस अधिकारियों का उन्हें ऐसे देखना जैसे वो कोई जानवर हो जिनका मूल्यांकन सिर्फ उनकी उपयोगिता के आधार पर होना है।
जीवन का कोई आंतरिक मूल्य नहीं।
हाँ, बस उपयोगितावादी मूल्य, वो कैम के बर्बर तर्क में एक हिंसक जन्म जैसा था। और फिर हाथ पर नंबर 174517 का गोद दिया जाना, पहचान का पूरी तरह मिट जाना।
दूसरा अहम मोड़ वो केमिकल एग्जाम था।
उस दृश्य को, एक तरफ वो भूखा फटेहाल डरा हुआ कैदी,
और दूसरी तरफ वो साफ सुथरा रौबदार जर्मन अफसर या एकेडमिक।
बिल्कुल, और लेवी को अपनी याददाश्त के किसी कोने से उस चरम दबाव में जटिल वैज्ञानिक ज्ञान को खुरच कर बाहर निकालना पड़ रहा था।
इस परीक्षा को पास करना उनके लिए कितना बड़ा मोड़ था?
बहुत बड़ा। इसी की वजह से उन्हें प्रयोगशाला में स्थानांतरण मिला, जिससे उनके जीवित रहने की संभावना नाटकीय रूप से बढ़ गई। ये उनकी बौद्धिक पहचान का एक अजीब विकृत सा सत्यापन भी था, भाग्य का एक महत्वपूर्ण मोड़।
और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा मानवीय पहलू को छूता है, लॉरेंजो पेरोन के साथ उनकी मुलाकात।
हाँ, लॉरेंजो एक इतालवी नागरिक मजदूर जो कैंप के बाहर ईंट बनाने का काम करता था, वो कैदी नहीं था।
और उसने लेवी की मदद की।
हाँ, लगभग 6 महीने तक लॉरेंजो रोजाना बिना किसी से कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, अपनी रोटी और राशन का बचावा हिस्सा लेवी के लिए लाता रहा।
ये तो उस माहौल में अविश्वसनीय लगता है
ना। यह एक साधारण लेकिन पूरी तरह से निस्वार्थ कार्य था। लेवी के लिए लोरेंजो एक नैतिक लंगर बन गया, इस बात का जीता जागता सबूत कि उस घोर अंधेरे में भी अच्छाई और इंसानियत कहीं ना कहीं जिंदा है।
लेवी का मानना था कि लोरेंजो ने उनकी जान बचाई।
हाँ, उन्होंने बाद में लिखा कि वो मानते हैं कि लोरेंजो के कारण ही वो आज जीवित है। उसने ना केवल उन्हें भुखमरी से बचाया, बल्कि उससे भी ज्यादा उसने उन्हें निराशा से बचाया, इंसानियत में उनके विश्वास को मरने नहीं दिया।
इन अनुभवों से, लेवी की जिंदगी से, हम आज क्या मानवीय सबक सीख सकते हैं जो सिर्फ इतिहास न होकर हमारे लिए भी प्रासंगिक हों?
बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहला सबक तो शायद यही है कि हमारी सभ्यता, हमारे नैतिक मानदंड कितने ज्यादा नाजुक है, कितनी आसानी से, कितनी जल्दी वो बिखर सकते हैं जब डर और सत्ता का नंगा नाच शुरू होता है।
और दूसरा सबक उदासीनता के खतरे के बारे में।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। लेवी का साफ मानना था कि होलोकॉस्ट इसलिए संभव हुआ क्योंकि बहुत सारे साधारण लोग चुप रहे, उन्होंने दूसरी तरफ देख लिया या बस अपने काम से काम रखा। ये हमें याद दिलाता है कि उत्पीड़ितों की कहानियों पर ध्यान देना, अन्याय के खिलाफ बोलना कितना अहम है।
एक और सबक गरिमा के बारे में है ना, कि बाहरी पहचान छिन जाने पर भी गरिमा बनाए रखना एक चुनाव है।
बिल्कुल, जब सब कुछ छीन लिया जाता है, नाम, कपड़े, बाल, तब भी अपनी आंतरिक गरिमा को बनाए रखने का संघर्ष प्रतिरोध का एक शक्तिशाली रूप बन जाता है। जैसे वो स्टीनलॉफ का उदाहरण जो रोज खुद को धोता था।
हाँ, वो सिर्फ सफाई नहीं थी।
नहीं, वो उसकी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन था, ये दिखाने का तरीका कि वो अब भी एक इंसान है, एक कर्ता है, सिर्फ एक वस्तु नहीं।
और फिर इस स्मृति का नैतिक कर्तव्य, याद रखना,
अपमान करने के लिए याद रखना और जीवित लोगों को चेतावनी देने के लिए याद रखना। साक्षी बनना, सच को बयान करना एक जिम्मेदारी बन जाती है, जैसा लेवी ने महसूस किया और निभाया।
और लोरेंजो की कहानी हमें क्या सिखाती है?
वो हमें दयालुता के छोटे छोटे गुमनाम कामों की असाधारण शक्ति दिखाती है। उस नरक में रोटी का एक टुकड़ा या एक दोस्ती भरा शब्द सिर्फ पेट नहीं भरता था, वो इंसानियत में विश्वास को, जीने की इच्छा को बनाए रखने में मदद करता था।
आज के समय में लेवी की ये बातें कहाँ फिट होती हैं? क्या वो आज भी प्रासंगिक हैं?
मेरे ख्याल से तो पहले से कई ज्यादा प्रासंगिक हैं। आज जब हम दुनिया भर में बढ़ते अधिनायकवाद, समाजों में बढ़ते ध्रुवीकरण, अमानवीयकरण की भाषा का इस्तेमाल देखते हैं।
हाँ, हम बनाम वो की सोच बहुत खतरनाक है।
बिल्कुल, लेवी के पूरी जिंदगी और लेखन इसी सोच के खतरों के खिलाफ एक शक्तिशाली चेतावनी है। तथ्यात्मक सत्य और स्पष्ट ईमानदार भाषा का महत्व, जैसा लेवी ने हमेशा इस्तेमाल किया, आज के इस पोस्ट ट्रूथ या अल्टरनेटिव फैक्ट्स के जमाने में बहुत ज्यादा है।
और वो ग्रे जोन वाली बात,
वो हमें चुनौती देती है कि हम अपनी नैतिक पसंदों और उन व्यवस्थाओं के बारे में गहराई से और ईमानदारी से सोचें। क्या हम अनजाने में किसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था का हिस्सा तो नहीं बन रहे? ये हमें जटिलता को स्वीकार करने के लिए कहती है।
तो अंत में ये याद दिलाती है कि इंसानियत कोई दीवी चीज नहीं है।
नहीं, ये एक चुनाव है, एक विकल्प जिसे हमें हर रोज हर पल सक्रिय रूप से चुनना पड़ता है।
इस पूरी बातचीत को समेटते हुए अगर हमें तीन मुख्य निष्कर्ष निकालने हों, एक भावनात्मक, एक बौद्धिक और एक सार्वभौमिक, तो वो क्या होंगे?
भावनात्मक अंतर्दृष्टि शायद ये होगी कि सबसे भयानक अमानवीय परिस्थितियों में भी इंसान के अंदर अपनी गरिमा और मानवता को बनाए रखने की एक अद्भुत, प्रायः अदम्य शक्ति होती है।
हाँ, चाहे वो कितने भी छोटे कामों से क्यों न जाहिर हों, जैसे स्टीनलॉफ का धोना या दांते की कविता याद करना, मानवीय भावना के इसी लचीलेपन में कहीं ना कहीं उम्मीद छुपी है।
बिल्कुल। और एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि?
बौद्धिक हूट से मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण शायद ग्रे जोन की अवधारणा ही है। ये हमें अत्यधिक दबाव में नैतिक जटिलता को समझने में मदद करती है। ये हमें आसान, काले और सफेद, पीड़ित अपराधी की कहानियों से परे देखने को कहती है और यह समझने में मदद करती है कि कैसे व्यवस्थाएं व्यक्तियों को भ्रष्ट कर सकती हैं या मुश्किल नैतिक दुविधाओं में डाल सकती हैं।
ये हमें चीजों को ज्यादा सूक्ष्मता से देखने की चुनौती देती है।
हाँ, और आखिर में एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि,
वो शायद अन्याय और पीड़ा का साक्षी बनने की नैतिक जिम्मेदारी के बारे में है। अपने व्यक्तिगत आघात को या दूसरों के आघात को देखकर उसे एक सामूहिक, समाज और भविष्य के लिए चेतावनी में बदलना, जैसा आपने कहा, स्मृति एक जिम्मेदारी है।
प्रीमो लेवी की कहानी और उनकी किताब सर्वाइवल इन ऑशविच हमें ये सब याद दिलाती है।
हाँ, कि इतिहास के सबसे अंधकारमय अध्यायों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीखना चाहिए, और ये कि इंसान की तर्क करने की क्षमता, उसकी याददाश्त और उसकी बुनियादी इंसानियत ही शायद अंधेरे से लड़ने के सबसे बड़े हथियार हैं।
उनकी वो शांत, स्थिर, ईमानदार आवाज आज भी उतनी जरूरी लगती है जितनी तब थी।
वाकई, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि आज हमारे अपने समाजों में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसे ग्रे जोन मौजूद हैं जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है।
हाँ।
और जहां शायद हमारी चुप्पी, हमारी उदासीनता या बस अपने काम से काम रखने की आदत अनजाने में ही सही किसी अन्याय को पनपने दे रही हो।
ये एक बहुत ही प्रासंगिक और जरूरी सवाल है, ऐसा कुछ जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।
बिल्कुल,
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकता फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।